चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि जोशी।
और मैं हूं नरेंद्र तिवारी।
और हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है
जब चलें शहर की ओर।
दोस्तों, ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आईड्यूसिंग मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने प्रवासी भाइयों को देते हैं वो सभी जानकारियाँ जो उनके गांव से शहर तक के सफर को आसान बनाती हैं।
हमारी कोशिश है कि हम आपके प्रवास को सुरक्षित बनाने में आपकी मदद कर सकें।
तो आइए इसी दिशा की ओर आज फिर कुछ नई जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं।
आ आ आ नरेन, जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने सभी शिक्षक श्रोताओं को आज शिक्षक दिवस के मौके पर बधाई देते हैं।
जी हाँ, जब चले शहर की ओर की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई।
और अब आइए सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दिल्ली आ गई, उतरो।
उमेश, ए उमेश। अरे भाई उठ जा, दिल्ली आ गई।
आ गई दिल्ली?
हाँ।
चल ले सामान पकड़।
चल भाई, कहीं चलकर हाथ मुंह धो ले।
अरे यहाँ बस अड्डे में कहाँ जाएगा, सब बहुत गंदा होगा। कल्पना के यहाँ जाकर नहा लेना।
अच्छा चल, तो फिर ठीक है।
चल यार ऑटो कर लेते हैं, बहुत थक गया हूँ, अब और बस में चढ़ा नहीं जाता।
भाई कहाँ मिलेगा तेरा ऑटो?
वो सामने।
चल तो फिर।
आ जाओ भाई साहब, आ जाओ बैठो। अरे आ जाओ भाई साहब, आ जाओ।
भैया लक्ष्मी नगर चलोगे?
हाँ बिल्कुल चलेंगे भाई साहब, आइए बैठिए।
किराया कितना लोगे?
किराया दे देना 300 रुपये।
300 रुपये? नहीं भैया, 300 रुपये तो बहुत ज़्यादा है।
आपको मालूम है लक्ष्मी नगर किधर पड़ता है? पता है कितनी दूर है?
जी वो तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी भैया 300 रुपये तो बहुत ज़्यादा है।
अरे भाई सही पैसे बताओ, कोई दिल्ली पहली बार तो आ नहीं रहे ना।
तो मीटर से चल लो, जो बने सो दे देना।
तो ठीक है मीटर से चलो। चल चंदर आजा।
आजा बैठो।
अरे मधु क्या बात है, तू बड़ी उदास दिखाई दे रही है आज।
नहीं शांति, ऐसी तो कोई बात नहीं।
रहने दे मधु, हमसे मत छुपा, सुना है तेरा पति दिल्ली चला गया।
हाँ।
ओ तो इसीलिए उदास है?
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अरे उसी की याद आ रही होगी है ना?
अब थोड़ी तो उदासी होगी ही ना, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है जैसे ही शहर में उनकी नौकरी लग जाएगी ना, उसके कुछ दिन बाद वो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे।
अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और एक मेरे वो है कि 4 साल हो गए शहर गए हुए और अभी तक बस एक बार आए हैं।
अरे शांति, तेरे वो एक बार आए तो सही, मेरे ये तो ऐसे गए जैसे कि गधे के सर से सींग, अभी तक कुछ खबर नहीं उनकी।
वैसे मधु अब थोड़ा ध्यान रखना, कुछ भरोसा नहीं होता इन मर्दों का। पता चले बीवी यहाँ पे इंतजार कर रही है और वो वहाँ शहर में किसी और के साथ मजे कर रहे हैं।
नहीं, वो ऐसे नहीं है।
अगर ना ही हो तो अच्छा, पर फिर भी कह देती हूँ कोई भरोसा नहीं इन मर्दों का।
अरे भैया कितना टाइम और लगेगा पहुँचने में? 1 घंटा तो हो गया। अरे ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं।
भाई मैंने तो पहले ही कहा था इतना पास नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बस पहुँचने ही वाले हैं। लो भाई आ गया लक्ष्मी नगर।
हाँ भैया कितने पैसे हुए?
पैसे देखता हूँ, 371 रुपये।
अरे वहाँ तो तुमने 300 रुपये बोले थे।
हाँ, तो मीटर से भी तो तुम ही बैठे थे ना, अब जो मीटर में आएगा वो तो देना ही पड़ेगा।
अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है?
तो फिर मीटर से क्यों आए? अरे मैं तो पहले ही तय करके बिठा रहा था, अब जितना ऑटो चलेगा उतना किराया तो देना ही पड़ेगा ना।
चंदर अब जितना बना है उतना दे दे, तेरे पास पैसे हैं ना?
हाँ है तो, पर उमेश यार
एक काम कर, अब जो बना है दे दे।
वो तो ठीक है उमेश, लेकिन
अरे यार अभी दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा।
ये लो भैया
लाओ।
पर अभी भी कह रहे हैं आप ज्यादा ले रहे हैं।
अगर ज्यादा लग रहा था तो बैठे ही क्यों थे।
चंदर चल अब क्या यहीं खड़े रहेंगे। ले वो आ गया कल्पना भौजी का घर।
अरे वाह यार, यहाँ तो पास में ही पीसीओ भी है। उमेश मैं जरा घर पर फोन करके आता हूँ। अरे उनको बता तो दूँ कि हम लोग दिल्ली ठीक ठाक पहुँच गए हैं।
ठीक है तुम फोन करो, मैं यहीं पान की दुकान पर हूँ।
अरे छोटू उनका फोन आया है।
हाँ हाँ वो रिसीवर नीचे रखा है। मुझे स्कूल को देर हो रही है दीदी, मैं चलता हूँ। आप जाने से पहले माँ को आवाज जरूर दे देना।
हाँ हाँ कह दूंगी। हेलो हेलो।
हाँ मधु कैसी हो?
जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा रहा आपका सफर?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम ठीक ठाक पहुँच गए हैं।
अरे बुआरी ज्यादा बातें मत कर, उसका वहाँ बिल लग रहा होगा, दिखा इधर मुझे बातें करने दे, मुझे भी कुछ जरूरी बातें करनी है उससे। सुनिए माँ जी आपसे बात करेंगी।
अरे ला तो सही।
हाँ चंदर बेटा पहुँच गया तू?
हाँ माँ पहुँच गया।
अच्छा सुन, ज्यादा पैसे खर्च मत करना और ध्यान से खर्चा करना।
हाँ माँ।
और हाँ जैसे ही नौकरी लग जाएगी ना कुछ पैसे भेज देना।
ठीक है माँ भेज दूंगा।
और हाँ
माँ मैं अब रखता हूँ, बिल बढ़ रहा है।
ठीक है रख दे। और सुन वो मेरे दवाई का हेलो हेलो शायद रख दिया उसने। चलो कोई बात नहीं, दोबारा फोन आएगा तो अपनी दवाई के बारे में बोल दूंगी उसे।
नमस्ते भौजी।
अरे उमेश तुम यहाँ आओ, अंदर आओ।
ये मेरा दोस्त है चंदर।
जी नमस्ते।
नमस्ते।
और कैसी हो आप?
मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
जी मैं भी ठीक हूँ।
आओ 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 अंदर आओ बैठो। तुम क्या सीधा गांव से आ रहे हो?
हाँ वो दरअसल मेरा एक काम निकल आया और चंदर नौकरी ढूंढने आया है, ये पहली बार आया है दिल्ली में।
अच्छा ठहरो मैं पहले पानी लेकर आती हूँ।
उमेश इनको पता नहीं है कि हम यहाँ रहने वाले हैं।
हाँ तो क्या हुआ, अभी बता दूंगा।
ये लो पानी।
हाँ लाइए। अच्छा भौजी हम यहाँ रह सकते हैं ना?
यहाँ? उमेश तुमको बताना तो चाहिए था।
क्यों कुछ प्रॉब्लम है?
नहीं नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना मैंने कमरे किराए पर चढ़ा रखे हैं। वैसे एक हफ्ते तक तो तुम यहाँ रह सकते हो क्योंकि वो लड़के एक हफ्ते के लिए अपने घर गए हैं। हाँ लेकिन उनके आने से पहले तुम्हें कहीं और रहने का इंतजाम करना होगा।
हाँ तो एक हफ्ता बहुत है ना, तब तक चंदर को कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी और मेरा काम तो वैसे भी एक दो दिन का ही है।
फिर भी उमेश अगर तुम फोन करके बता ही देते तो अच्छा रहता, मैं कुछ इंतजाम करती।
वो मैंने सोचा कि सोबन और मैं तो पहले भी आते थे तो इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और सोबन को मैंने कितनी बार डांटा इस बात को लेकर, कभी मिले तो पूछना उसे। चलो अब सामान अंदर रख दो, मैं कमरा दिखाती हूँ तुम लोगों को। आओ।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चले शहर की ओर। नरेन जो लोग अपने परिवार को छोड़कर गांव से शहर आते हैं क्या उन्हें मालूम है कि उनके पीछे परिवार पर क्या बीतती है? क्या इस बारे में वो आपस में कभी चर्चा भी करते हैं?
अंजलि क्यों नहीं यही बात हम पूछे हमारे श्रोताओं से, क्या फर्क आ जाता है उन महिलाओं की जिंदगी में जिनके पति उन्हें गांव में छोड़कर काम की तलाश में शहर आ जाते हैं, हमारे अगले सेगमेंट में।
जब वो जाना तब मैं बड़ बुर मनेंदू, कखी भी जाना तब उनकी कमी महसूस हो जाती। घर में जी बच्चा और उनकी माँ जी पिताजी और भूला छ बहुत बुरा लगता। उनके जाने के बाद घर इकलिकार हो जा।
वेदर आंद कुछ परेशान तो बन खास कुछ नहीं, उन घर में हो लोग भी छा ना, पर यो की जन कबरों कोई बीमार होगी, कबरों कोई बच्चों की कोई प्रॉब्लम होगी तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाए, बाद बाकी तो और घर में सब ठीक है मतलब ना।
ज़्यादा कोई परेशान तो कुछ नहीं है, बस बच्चों की प्रॉब्लम है कि बच्चों को जैसी थोड़ी परेशानी रहना कि अगर घर में हो तो मतलब कि अच्छे स्कूल पढ़ो छोड़ जाओन अब हम तो जा ही नहीं सकते छोड़ से यहाँ के परेशान ज़्यादा
सब कुछ काम अपना आप ही करना पड़ दो गर्म खेत में हाल भी आप ही लगा पड़ दो धान को काम भी आप ही करना पड़ दो जितना भी गर्म पर दुख तकलीफ है सब आप ही करना पड़ दो
सुना आपने हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने महिलाओं से बात की उनके हालात को जानने की कोशिश की और इसके लिए हम अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा नरेन, हमारे प्रवासी दोस्त जब अपने घर परिवार को छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर आते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनकी मदद करे?
हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। आज अपने सेगमेंट कुछ विश्वास में हम इसी विषय पर तो बात कर रहे हैं।
तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट कुछ विश्वास।
दोस्तों, कास्ट प्लान एक ऐसी संस्था है जो समुदाय विकास के लिए दिल्ली के बदरपुर और मदनपुर खादर क्षेत्र में काम करती है। इसी के तहत आइए जानते हैं उनके लाइवलीहुड यानी रोजगार योजना के बारे में उनके प्रोग्राम मैनेजर श्री अशोक शर्मा जी से। सर, आपके रोजगार योजना के अंतर्गत आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं?
लाइवलीहुड के अंदर हम अलग अलग तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं जो कि मार्केट ड्रिवन है। दिल्ली या दिल्ली के आसपास की जगह पर किस तरह की जॉब अवेलेबल है, हम ये थोड़ा असेसमेंट करते हैं। फिर यूथ को हम मोबिलाइज करते हैं कि वो आए और वो क्या उनकी योग्यता है, क्या उनका एप्टीट्यूड है, उसके टेस्ट करने के बाद हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। फिलहाल हमारा जो है वो आईटी के ऊपर कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग और आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांड हमारी आ रही है हमारे पास कि मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग भी दी जाए, जो हम इस साल प्लान कर रहे हैं। ये जो हम ट्रेनिंग देते हैं, हम एजेंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन किस क्षेत्र में ट्रेनिंग दे सकती है। गवर्नमेंट जैसे जन शिक्षण संस्थान है या कुछ प्राइवेट कॉरपोरेट फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कोलैबोरेशन से हम उनको बुलाते हैं और उनको ट्रेनिंग कराते हैं। कई जगह हमारे स्टूडेंट हम वहाँ पर प्लेस करते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, और कई जगह जैसे ब्यूटिशियन का अगर है तो वो कम्युनिटी के अंदर ही इंस्ट्रक्टर जन शिक्षण संस्थान से हमारे पास आते हैं।
कोई व्यक्ति अगर कोई कम्युनिटी का कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा?
देखिए सब, अगर वो व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है और ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो वो हमारे बदरपुर के जो भी हमारी कम्युनिटी लोकेशन हैं उनमें रहने वाला हो या मदनपुर खादर की लोकेशन में रहने वाला हो। फिर हमारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उसको फुलफिल करेगा, एप्लीकेशन देगा, बाकायदा टेस्ट लेकर हम उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको भेजेंगे।
धन्यवाद अशोक जी। और अब आइए जानते हैं किरण शर्मा से कि उनके जीवन पर इस ट्रेनिंग का क्या प्रभाव पड़ा।
मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक ब्यूटिशियन में 3 महीने मतलब कि प्रैक्टिस किया है। उसके बाद से अब मैं अपने घर पे ही काम करती हूँ। घर पे मेरे काफ़ी कस्टमर हैं जो आते हैं और मुझसे काम करवाते हैं। मैं ब्यूटिशियन के साथ साथ अपना सिलाई का भी करती हूँ। मैंने कंबाइंड दोनों ही खोल रखे हैं। ट्रेनिंग लेने से पहले मुझे जहाँ तक लगता है मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, एक भीड़ के अंदर चलने वालों में से थी। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद मैं अब अकेला खुलकर चलना पसंद करती हूँ। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मेरे घर में आमदनी भी होती है, मैं अपना खुद का खर्चा निकाल सकती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाई का खर्चा अपना खुद निकाल लेती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है।
वैसे नरेन, शहर में आकर ऑटो और बसों की परेशानियां तो सभी झेलते हैं, पर जैसे चंदर को ऑटो वाले ने ठगा वैसे ही कई बार बसों के कंडक्टर भी अनजान मुसाफिरों को बेवकूफ बनाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए?
इसके लिए अंजलि क्यों ना भैजी से पूछें?
हाँ ये ठीक रहेगा।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी। भैजी, जब हमारे प्रवासी भाई गांवों से शहरों में आते हैं तो कुछ ऑटो ड्राइवर्स, यहाँ तक कि कुछ बस वाले भी उनके शहर में अनजान होने का फायदा उठाते हैं और उन्हें नया देखकर उनसे मनचाहा किराया वसूल करते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं, तो उन्हें इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
बड़ी सही समस्या की ओर तुमने ध्यान आकर्षित किया है। ये तो बहुत समय से होता आया है, तो इसके लिए मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा जो शहर में नए आए हैं या फिर अभी शहर में अनजान हैं और रास्तों के बारे में जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो पहले तो वो अपने आसपास के लोगों से पता कर लें कि जिस जगह उनको जाना है वो वहाँ से कितनी दूर पर है। क्यों अंजलि?
जी भैजी।
और फिर वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा ये भी जानना जरूरी है। साथ ही जब ऑटो ड्राइवर से बात करें तो सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर से बात ना करें, दो या तीन अलग अलग ऑटो ड्राइवर से बात करें और उनसे उस जगह के बारे में ऐसे बात करें जैसे आप उस जगह से परिचित हैं, ताकि वो शहर में आपको अनजान ना समझे। ऐसा करके आप ऑटो ड्राइवर द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। एक तरीका और है।
वो क्या भाईजी?
एक मैप यानी कि शहर का नक्शा अपने पास जरूर रखें। और भाई अब तो ऑटो ड्राइवरों की शिकायत करने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन भी खोल दी है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
बिल्कुल भाईजी, दिल्ली में हेल्पलाइन का नंबर है 4240-0400।
नरेन एक बार अंग्रेजी में भी बोल दो।
जरूर भाईजी, 4240-0400।
भाईजी ये तो हुई ऑटो की बात, लेकिन आप बसों के बारे में क्या कहेंगे?
अब दिल्ली की बसों में सफर करना है तो आपको शरीर से तंदुरुस्त और पैरों से चीते सरी का फुर्तीला बनना पड़ेगा। मुंबई में तो बस वाला फिर भी आपके चढ़ने का इंतजार करता है और मुसाफिर भी इतनी धक्का मुक्की नहीं करते। वहां सहूलियत इसलिए भी है कि मुंबई की कामकाजी जनता तो ज्यादातर लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करती है। दिल्ली में भी मेट्रो आ रही है, लेकिन जब तक दिल्ली में सब जगह मेट्रो नहीं पहुंच जाती, यहाँ बस सर्विस पर ही पूरी जनसंख्या का बोझ बना रहेगा।
मगर भैजी इस सब में पिस्ता तो मुसाफिर ही है ना?
वो तो है, लेकिन दूसरी ओर ये भी सही है कि अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो सहूलियत होगी। जैसे बस स्टैंड पर चौकन्ने खड़े रहिए, हो सके तो बसों का टाइम टेबल खरीद लीजिए, बस आए तो उसके रुकने का इंतजार कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट, भीड़ से बिल्कुल मत डरिए। भीड़ के साथ साथ चढ़ने की कोशिश कीजिए, यह अभ्यास तो करना पड़ेगा दिल्ली में भाई, मगर सावधानी से। हाँ, चलती बस पर कभी भी भागकर मत चढ़िए, कंडक्टर से अपना टिकट और बाकी के पैसे हाथों हाथ ले लीजिए, क्या पता बाद में मिलता है कि नहीं मिलता है?
जी जी।
हाँ, पीछे के दरवाजे से चढ़िए और धीरे धीरे आगे की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि स्टैंड आने पर सामने से ही उतरना पड़ेगा और अगर स्टैंड के बारे में आपको पता नहीं है, आप दिल्ली में नए हैं, तो ड्राइवर से कम पूछ तो सकते हैं, इसमें भी आसानी होगी।
जी भैजी।
महिलाओं को तो छेड़खानी से बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए, कोई भी जरा सी अश्लील हरकत करे तो तुरंत दूसरे मुसाफिरों को बताएं या फिर जोर से चीख पुकार करें।
थैंक यू भैजी, आपने बहुत ही व्यवहारिक टिप्पणियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों जब आप शहर में आते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की तलाश।
रोजगार के लिए कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ से शुरुआत की जाए, अगर ये सब कुछ पता चल जाए तो रोजगार मिलना आसान हो जाता है।
लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं।
दोस्तों दिल्ली में कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। आप दिल्ली में इन इलाकों में जाकर रोजगार ढूंढने की शुरुआत कर सकते हैं।
इसी तरह मुंबई में भी कुछ इलाके हैं जहां से आप रोजगार की तलाश शुरू कर सकते हैं। ये इलाके हैं भांडुप, चारकोप, अंधेरी और दादर।
आप रोजगार के लिए अखबारों की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें हर सप्ताह वैकेंसीज के बारे में जानकारी होती है। ज्यादातर अखबारों के साप्ताहिक अंकों में ये जानकारियाँ छपती हैं।
इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपनी जरूरत के मुताबिक खाली पदों की जानकारी बाहर बोर्ड पर लिख देती हैं।
साथ ही कुछ ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियां भी होती हैं जो कंपनियों और लोगों दोनों के लिए काम करती हैं। ये कंपनियों को कर्मचारी उपलब्ध करवाती हैं और लोगों को रोजगार। इन्हीं एजेंसियों में से है टीमलीज और भारतमजदूर.com, जो कि प्रवासी लोगों को रोजगार दिलाने में काफी काम कर रही हैं। इनका संपर्क काफी सारी कंपनियों से होता है और ये लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब दिलवाती हैं।
अगर आप मुंबई में हैं तो आप टीमलीज से इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पता है टीमलीज मुंबई, 501 पांचवी मंजिल, चिंतामणि प्लाजा बिल्डिंग, चकाला, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099। वहाँ के मोबाइल नंबर्स हैं 0932296-6350 और 0932536-6350। 3915020।
और दिल्ली में टीम लीज का पता है, टीम लीज दिल्ली 81/1 फर्स्ट फ्लोर गंगा प्लाजा श्री अरबिंदो मार्ग अधचिनी नई दिल्ली 110017। यहाँ का फोन नंबर है 09999887156।
टीम लीज आपको जॉब दिलवाने के लिए आपसे ना तो किसी तरह का कमीशन लेती है और ना ही किसी तरह की फीस चार्ज करती है। ये अपना कमीशन उन कंपनियों से लेती है जिन्हें ये मजदूर सप्लाई करती है।
भारतमजदूर.com भी एक ऐसी ही कंपनी है जो कि नौकरी तलाश करने वाले लोगों का प्रोफाइल अपनी वेबसाइट पर डाल देती है। इसका वार्षिक शुल्क है 100 रुपए। अलग अलग कंपनियां इस वेबसाइट पर जाकर आपका प्रोफाइल देख सकती हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक आपसे इंटरव्यू के लिए सीधा संपर्क कर सकती हैं।
भारतमजदूर.com का पता है भारतमजदूर.com, शॉप नंबर 6, BMC कॉलोनी नंबर 1, मालवानी, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095, महाराष्ट्र। और यहाँ का मोबाइल नंबर है 09820206876।
आप चाहें तो भारतमजदूर.com की वेबसाइट भी देख सकती हैं। वेबसाइट है www.bharatmazdoor.com। दोस्तों, अगर आप इस विषय से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782। तो दोस्तों, काम की बात भी हो गई और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट आपकी चिट्ठी की।
नरेन नरेन नरेन, आपकी चिट्ठी में हम अपने श्रोताओं की चिट्ठी भी जरूर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना तो सुनवा दो।
तो ठीक है, चलो सुनते हैं ये गाना।
चल दो छोरी मेरा पहाड़े गाँव, चल दो छोरी मेरा पहाड़े गाँव, दे बातों की भूमि वके हरी भरी डांडियों माँ, दे बातों की भूमि वके हरी भरी डांडियों माँ।
और अब वक्त हो चला है उस विजेता के बारे में जानने का जिनकी चिट्ठी को चुना गया है हमारे अगले सेगमेंट आपकी चिट्ठी में। तो दोस्तों, आज के विजेता हैं जयप्रकाश अंथवाल टिहरी गढ़वाल से।
जयप्रकाश अंथवाल जी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, मैं जयप्रकाश अंथवाल टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का वासी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात रोजगार की तलाश में पहले दिल्ली गया, वहाँ से नाकाम होकर अपने चाचा जी के साथ बम्बई आ गया। मेरे चाचा जी ने मुझे एक ऑफिस में नौकरी पर लगा दिया। मेरा काम था गोदाम का सामान देखना, कितना आया कितना गया इन सब का हिसाब रखना। मेरी छुट्टी रात 8-9 बजे होनी थी। पूरे दिन काम किया, शाम को बरसात ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते बस और रेल का आवागमन रुक गया। टेलीफोन ने काम करना बंद कर दिया, ऑफिस भी बंद कर दिया गया, लाइट चली गई, मैं घबरा गया। मेरे ऑफिस के एक सज्जन ने मुझे सहारा दिया। हम लोग पैदल मस्जिद बंदर स्टेशन आए, वहाँ पर रेलगाड़ी बस टैक्सी सभी कुछ बंद थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। रात के 10 बज गए, जेब में केवल 10 रुपए थे। मुझे मस्जिद बंदर से शिवड़ी जाना था। सोचते सोचते रात के 12 बज गए। प्लेटफॉर्म पर लोग भी धीरे धीरे कम होने लगे, भूख भी लग गई। दिल ही दिल में मैं रोने जैसा हो गया। माँ पिताजी की, गांव गली की, सबकी याद आने लगी। इसी तरह रात के 2 बज गए, मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा बैठा नींद में ऊँघने लगा। देखते ही देखते सुबह के 5 बज गए, बरसात भी बंद हो गई। फिर लोगों का शोर सुनाई दिया और पता चला कि रेलगाड़ी आ रही है। लोगों की भीड़ देखकर मैं तो घबरा गया। गाड़ी दादर तक ही चलेगी ऐसा लोगों का कहना था। मैं बड़ी मुश्किल से ट्रेन में चढ़ पाया और 2 घंटे के बाद मुश्किल से दादर स्टेशन तक पहुंच पाया। दादर स्टेशन से मैं पैदल पूछ कर शिवड़ी स्टेशन तक गया। वहां से घर पर गया। घर पर सभी लोग परेशान थे। पता चला मेरे चाचा जी और हमारा पड़ोसी भी रात को बरसात के कारण घर नहीं आए। मैं भूख से परेशान था। मैंने चाय बनाई, थोड़ा नाश्ता किया और फिर सोचने लगा कि क्या करें, कहाँ जाएं, चाचा जी की खैरियत का पता कैसे लगाएं। मैं और पड़ोस के लोग अभी सोच विचार कर ही रहे थे कि चाचा जी और हमारा पड़ोसी भी घर पहुंच गए। ये किस्सा सन 1977 का है, जब मैं बम्बई आया और पहले ही दिन पहली नौकरी का अनुभव लिया। आज मैं दूसरी जगह नौकरी पर हूँ, खुश हूँ, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ हूँ, लेकिन जब भी बम्बई में बरसात का मौसम आता है तब मुझे 1977 की वो बरसात की रात याद आ जाती है और मन में एक डर की लहर उठ जाती है। जयप्रकाश अंथवाल जी, आपने अपना ये अनुभव इतने सजीव तरीके से लिखकर हमें भेजा है कि आपकी चिट्ठी पढ़ते हुए हमें यूं लगा जैसे ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हों। और नरेन, एक खास बात ये मैं यहाँ कहूँगी कि ये इनका 1977 का अनुभव है और आज करीब 31 साल बाद 2008 में हम इनके इस अनुभव को रेडियो पर अपने सभी श्रोताओं के साथ बांट भी रहे हैं और इसके लिए इन्होंने एक ट्रैवल बैग भी जीता है।
जयप्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे बाकी श्रोता जो अपने प्रवास से जुड़े अनुभव भरे खत हमें भेजना चाहते हैं वो भी हमारा पता नोट कर लें। पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट, अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003। तो दोस्तों, चिट्ठी के बाद अब बारी आती है संदेशों को सुनने की,
तो आइए सुनते हैं आज के संदेश।
मैं जगदीश मिश्रा हूँ, संगम विहार से, दिल्ली से, और मेरी बहन उमा बिस्ट रहती हैं उधर अल्मोड़ा में। बहन, आप अपना फोन चालू करें, काफी टाइम से आपका फोन बंद है, और आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं।
जी, मैं सोनी बोल रही हूँ नगीना बिजनौर से। मैं अपने परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं संदेश देना चाहती हूँ और खासकर अपने मोमानी को संदेश देना चाहती हूँ कि वे जहाँ रहे खुश रहें। और एक मेरी फ्रेंड है जो नजीबाबाद में रहती है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ और मैं उससे बहुत ही प्यार करती हूँ और वो सुनने तो कॉल बैक करे मुझे।
नमस्कार, मैं हयात सिंह सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती जिला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट तहसील का रहने वाला हूँ। मैं पूर्ण जन्म से दृष्टिहीन हूँ और मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिल्ली पढ़ाई करने के लिए भेजा है। उन्होंने बहुत कठिन मेहनत करके पहाड़ी क्षेत्रों में मजदूरी करके मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि वे मेरे विषय में किसी प्रकार की भी चिंता ना करें। मैं दिल्ली में ठीक प्रकार से हूँ अपने सभी साथियों के साथ और इस साल मेरा परीक्षा फल भी उम्मीद के मुताबिक अच्छा रहा है, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा सुखी रहें।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके संदेश आपके परिवारों तक जरूर पहुंच गए होंगे।
और अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार तक या शहर में काम कर रहे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें SMS करना ना भूलें।
हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जब चले शहर की ओर और अब समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हमें चिट्ठियां जरूर लिखते रहें, वो भी
अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव के साथ। और इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि हर हफ्ते हमें आपके इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके भेजते हैं।
और हम ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना क्लब तैयार करें और उस क्लब से जुड़ी गतिविधियों को चिट्ठी के जरिए हमें भेजें। हम आपकी चिट्ठी को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और जो चिट्ठी सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसे दिया जाएगा एक आकर्षक इनाम। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए।
नमस्कार।